एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी अमेरिकी नॉवल पर बात करने वाले हैं जो कहानी से ज्यादा मुझे लगता है एक खूबसूरत पेंटिंग जैसी है।
वाह, ये तो बहुत दिलचस्प शुरुआत है।
ये है विला कैथर की 1927 की क्लासिक डेथ कम्स फॉर द आर्चबिशप, और आज की हमारी चर्चा एक बुनियादी सवाल के आसपास घूमेगी। किसी अनजान कठोर जमीन को कोई अपना घर कैसे बनाता है? क्या सिर्फ वहां रहने से, या फिर वहां कुछ ऐसा बनाने से जो आपके बाद भी मतलब जिंदा रहे?
ये बहुत ही गहरा सवाल है, और यही सवाल एक तरह से इस नॉवल की आत्मा है। विला कैथर वो अमरीकी जमीन की कहानीकार थी, और इस किताब में तो उन्होंने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान को जैसे अपना कैनवस ही बना लिया।
सही।
और ये बात भी है कि उन्होंने खुद कहा था कि ये कोई पारंपरिक उपन्यास नहीं है जिसमें एक सीधी साधी कहानी हो।
हाँ, एक शुरुआत मध्य और अंत वाली कहानी नहीं है ये।
बिल्कुल, उन्होंने इसे एक फ्रेस्को या भित्तिचित्र कहा, जैसे दीवारों पर संतों की जिंदगी की तस्वीरें बनी होती है ना, टुकड़ों में, लेकिन सब मिलकर एक पूरी कहानी कहती हैं।
हाँ, और उनकी लिखने की जो शैली है वो भी कमाल की है। उसे नॉवल डेमलर कहते हैं।
नॉवल डेमलर
मतलब ऐसा उपन्यास जिसमें कह सकते हैं फालतू का फर्नीचर ना हो। अगर एक कुर्सी या मेज कहानी के लिए जरूरी नहीं तो कैथर उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे।
अच्छा,
वो सिर्फ उन चीजों पर रोशनी डालती हैं जो किरदार की भावनाओं को या कहानी के मूड को पकड़ती हैं। इसीलिए ये किताब पढ़ने में बहुत शांत और गहरी लगती है।
बिल्कुल, और कहानी का समय भी बहुत दिलचस्प है। ये 19वीं सदी का मध्य है।
हाँ,
मेक्सिको अमेरिकी युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है, और न्यू मेक्सिको का जो विशाल इलाका है वो अब अमेरिका का हिस्सा बन गया है। तो वहां तीन संस्कृतियां एक दूसरे से टकरा रही हैं।
कौन कौन सी?
एक तो हजारों साल पुरानी मूल अमेरिकी संस्कृति, फिर सदियों पुरानी स्पेनिश मैक्सिकन कैथोलिक संस्कृति, और फिर नई रही आई अमेरिकी संस्कृति।
तो मतलब एक तरह का कल्चरल मेल्टिंग पॉट।
हाँ, और इसी उथल पुथल के बीच दो फ्रांसीसी पादरी एक मिशन पर आते हैं।
तो चलिए इन दो दोस्तों से ही मिलते हैं। कौन थे ये लोग और इनका मिशन क्या था? मतलब क्या चीज उन्हें फ्रांस से इतनी दूर इस रेगिस्तान में खींच लाई?
ये दो दोस्त थे फादर जॉन मरी लाटोर और फादर जोसेफ वेला। ये लोग 1851 में न्यू मैक्सिको पहुंचते हैं, और लाटोर को इस विशाल रेगिस्तानी इलाके का पहला बिशप बनाया गया है।
पहला बिशप?
जी, मिशन सुनने में तो सीधा लगता है, कैथोलिक चर्च की व्यवस्था को फिर से ठीक करना, लेकिन असल में ये बहुत बहुत मुश्किल काम था। चर्च में भ्रष्टाचार था, पादरी अपनी मनमानी कर रहे थे,
और इलाका भी तो बहुत बड़ा और कटा हुआ था ना।
हाँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही अपने आप में एक चुनौती थी।
और मुझे लगता है कि यहाँ असली संघर्ष किसी एक विलन से नहीं था, मतलब कोई एक बुरा आदमी नहीं था जिसे हराना था।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यहाँ असली संघर्ष था उस जमीन से, उसकी दूरियों से, उसके मौसम से, और सबसे बड़ा संघर्ष था उन तीन संस्कृतियों की गहरी जड़ों वाली परंपराओं से। उन्हें समझे बिना वहां कुछ भी करना नामुमकिन था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसकी अपनी एक रूहानियत थी, और इन फ्रांसीसी पादरियों को पहले उसे समझना था, उसका सम्मान करना सीखना था।
और इस संघर्ष के बीच में ये दो दोस्त लाटूर और वेलाइन, जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे।
बिल्कुल, जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू।
हाँ, कोई उन्हें मिशन का दिमाग और दिल भी कह सकता है। चलिए पहले दिमाग की बात करते हैं। आर्च बिशप लाटूर
वो वाकई इस मिशन का दिमाग थे। बहुत पढ़े लिखे, शांत, चिंतन करने वाले इंसान,
हर चीज को सलीके से करने वाले।
हाँ, कला और सुंदरता के पारखी। आप सोच सकते हैं कि फ्रांस के उस व्यवस्थित माहौल से आकर न्यू मैक्सिको की ये जंगली बेतरतीब दुनिया शुरू में उन्हें कितनी अजीब लगी होगी।
इसीलिए शायद उनकी यात्रा सिर्फ बाहर की नहीं थी, अंदर की भी थी। उन्हें सिर्फ चर्च नहीं बनाना था,
उन्हें इस जमीन से अपना रिश्ता भी बनाना था।
सही।
बिल्कुल, और दर्शकों के दौरान वो धीरे धीरे इस रेगिस्तान की खूबसूरती को देखना सीखते हैं। वो यहाँ के फैले हुए आसमान, बदलते रंगों और उस गहरी खामोशी से प्यार करने लगते हैं। वो समझते हैं कि यहाँ की सादगी में एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति है,
और इसी समझ का नतीजा था उनका सबसे बड़ा सपना।
हाँ,
सांता फे का कैथेड्रल।
वो वहाँ एक रोमनेस्क शैली का कैथेड्रल बनाना चाहते थे, लेकिन ये सिर्फ एक इमारत बनाने की जिद नहीं थी।
नहीं
तो क्या था ये?
ये उनके पूरे मिशन का प्रतीक था। वो चाहते थे कि कैथेड्रल का डिजाइन तो यूरोपीय हो, लेकिन वो बने वहां के स्थानीय सुनहरे पत्थर से।
अच्छा, यानी पुरानी दुनिया की व्यवस्था और नई दुनिया की आत्मा का एक खूबसूरत संगम।
और इस शांत सोचने वाले दिमाग के पूरक थे फादर विलान, जो मिशन का दिल थे।
फादर जोसेफ विलान, अरे वो तो आग का गोला थे, ऊर्जा से भरपूर, हसमुख, मिलनसार,
आम लोगों के बीच रहने वाले।
हाँ, लोगों के दिलों में बसने वाले। जहां लाटोर सोचते थे वहीं वेलान काम करते थे। उनकी आस्था बहुत सीधी और सरल थी, लोगों की सेवा करो। वो घोड़ों और खच्चरों पर बैठकर दूर दराज के गांवों तक जाते, चर्च बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करते।
सुना है उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे।
कुछ भी, चाहे इसके लिए उन्हें जुआई क्यों ना खेलना पड़े। वो लोगों के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते।
और ये दोस्ती इसीलिए भी इतनी मजबूत लगती है क्योंकि वो दोनों इतने अलग थे, एक के बिना दूसरा अधूरा था।
हाँ, ये बात तो है।
अगर सिर्फ लाटूर होते तो शायद वो कैथीड्रल एक सपना ही रह जाता, कभी बन नहीं पाता। और अगर सिर्फ विलान होते तो शायद मिशन में वो गहाई और वो दूरदृष्टि नहीं होती जो लाटूर के सफर को दिखाती है।
कहानी कई छोटी छोटी घटनाओं से बनी है। पहला पड़ाव हम कह सकते हैं आगमन और स्थापना। जब लाटूर सांताफे पहुंचते हैं तो वहां के पादरी उन्हें बिशप मानने से ही इनकार कर देते हैं।
अरे
हाँ, उन्हें अपनी नियुक्ति के कागजात लाने के लिए मेक्सिको तक की एक लंबी और खतरनाक यात्रा करनी पड़ती है, और यही उनका सामना ताओस के शक्तिशाली पादरे मार्टिनेज जैसे भ्रष्ट पादरियों से होता है।
अच्छा।
जो चर्च के नियमों को खुलेआम तोड़ते थे, तो लाटूर को बहुत सख्ती से अपनी सत्ता स्थापित करनी पड़ती है।
यानी पहला काम तो घर को ही तीत करने का था।
बिल्कुल। इसके बाद दूसरा पड़ाव आता है जहां लाटूर इस जमीन की प्राचीन आत्मा से जुड़ते हैं। वो स्काई सिटी, एकोमा, प्यूब्लो जैसी जगहों पर जाते हैं जो एक विशाल चट्टान के ऊपर बसा एक प्राचीन गांव है। यहां वो सत्ता के दुरुपयोग की पुरानी कहानियां सुनते हैं। अपने मूल अमेरिकी गाइड जैकिंटो के साथ यात्रा करते हुए उन्हें उस आध्यात्मिक दुनिया की झलक मिलती है जो ईसाई धर्म से बहुत पुरानी है।
और वो किसी को बदलने या उसमें दखल देने की कोशिश नहीं करते, बस समझने की कोशिश करते हैं।
यही उनकी खासियत है। फिर तीसरा और सबसे भावनात्मक पड़ाव आता है निर्माण और बिछो। हाँ, फादर वेला जो हमेशा काम की तलाश में रहते हैं, वो कोलोराडो के गोल्ड रश कैंपों में सेवा करने के लिए चले जाते हैं। और ये लाटूर की जिंदगी का सबसे अकेला दौर होता है,
अपने सबसे अजीज दोस्त से दूर।
हाँ, और उनके जाने के बाद लाटूर अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी ऊर्जा अपने सपने यानी कैथीड्रल के निर्माण में लगा देते हैं। अब वो कैथीड्रल सिर्फ एक इमारत नहीं रहता,
वो उनकी दोस्ती, उनकी आस्था और इस जमीन के लिए उनके प्यार का एक जीता जागता स्मारक बन जाता है।
बिल्कुल सही।
और कहानी का अंत, नॉवल का शीर्षक ही है डेथ कम्स फॉर द आर्चबिशप, मृत्यु आर्चबिशप के लिए आती है। तो ये अंत कैसा है? क्या ये डरावना है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का अंतिम पड़ाव बहुत शांत और खूबसूरत है। फादर वेलैं की कोलोराडो में मौत हो जाती है, लाटूर बूढ़े होकर रिटायर हो जाते हैं। उनके पास मौका होता है कि वो वापस फ्रांस लौट जाएं, लेकिन वो न्यू मैक्सिको में ही रहने का फैसला करते हैं। उनका अंत बहुत शांतिपूर्ण है। मृत्यु एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने अपेक्षित मेहमान की तरह आती है,
जिसके लिए वो तैयार हैं।
हाँ, और अपने आखिरी पलों में उनकी यादें फ्रांस के बागों की तरफ नहीं जाती।
तो कहाँ जाती हैं?
वो उस पहली यात्रा की तरफ लौटती हैं जो उन्होंने सालों पहले वेलैं के साथ इस रेगिस्तान में की थी।
ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने जमीन को पूरी तरह से अपना घर बना लिया था। और घर बनाने की ये जो बात है, मुझे लगता है यही इस उपन्यास के सबसे गहरे अर्थों की ओर ले जाती है। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये संस्कृतियों का एक संगम था, है ना?
हाँ, और ये इस नॉवेल का सबसे जरूरी विषय है। लेकिन ये संगम बहुत सीधा साधा नहीं है। कैथर किसी एक संस्कृति को दूसरे से बेहतर नहीं दिखाती, ये बात सही है।
पर यहां एक सवाल उठता है, कहानी विलय की है लेकिन क्या यह पूरी तरह सम्मानजनक था? आखिरकार लाटोर वहां चर्च की सत्ता स्थापित करने आए थे, जो अपने आप में एक औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल काम था। क्या कैथर इस तनाव को पूरी तरह दिखाती हैं या वो इसे थोड़ा आदर्शवादी बना देती हैं?
ये बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब शायद यह है कि कैथर कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर रही हैं। वो लाटूर के व्यक्तिगत और आध्यात्मिक सफर पर ध्यान दे रही हैं। लाटूर एक संस्था के प्रतिनिधि के तौर पर आते हैं, लेकिन एक इंसान के तौर पर वो सीखते हैं। वो मूल अमेरिकी रिवाजों या मैक्सिकन लोक मान्यताओं को खत्म करने की कोशिश नहीं करते,
बल्कि
उनमें भी ईश्वर की एक झलक देखते हैं। वो सीखते हैं कि सच्ची आस्था किसी एक परंपरा को थोपने से नहीं बल्कि अलग अलग रास्तों के बीच पुल बनाने से पैदा होती है।
और शायद वो कैथेड्रल इसी पुल का प्रतीक है, यूरोपियन डिजाइन लेकिन पत्थर इसी जमीन का।
बिल्कुल। एक और चीज जो मुझे इस किताब में बहुत शक्तिशाली लगी वो है यहाँ का परिदृश्य, यहाँ का लैंडस्केप। न्यू मेक्सिको का रेगिस्तान सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
वो तो खुद एक जिंदा किरदार है।
विला कैथर जिस तरह से यहाँ की रोशनी, रंगों और खामोशी के बारे में लिखती हैं, वो माहौल लगभग रूहानी बन जाता है।
अच्छा, लाटूर धीरे धीरे महसूस करते हैं कि ये जमीन खुद ईश्वर की मौजूदगी का सबूत है। यहाँ की सादगी उन्हें बदल देती है। वो समझते हैं कि जमीन का अपना एक इतिहास है, अपनी एक आत्मा है जो किसी भी इंसानी धर्म से ज्यादा पुरानी और विशाल है।
उपन्यास में चमत्कारों की बात भी बहुत अलग ढंग से की गई है। मतलब कोई आसमान से रोशनी नहीं उतरती या कोई असाधारण घटना नहीं होती।
सही कहा। लाटूर का मानना है कि चमत्कार किसी बाहरी शक्ति के दखल से नहीं होते।
तो फिर कैसे होते हैं?
वो हमारी अपनी समझ के गहरा हो जाने से होते हैं। किताब में एक जगह वो सोचते हैं, चमत्कार इस बात पर निर्भर नहीं करते कि दूर से कोई आवाज या चेहरा हमारे पास आ जाए, बल्कि इस बात पर कि हमारी इंद्रियां इतनी तेज हो जाएं कि हम उसे देख और सुन सके जो हमेशा हमारे चारों ओर मौजूद है।
ये तो आस्था के बारे में बहुत ही आधुनिक और एक मनोवैज्ञानिक सोच है। ये प्रेम की शक्ति में विश्वास करने जैसा है।
हाँ, किताब की एक और पंक्ति है, जहाँ गहरा प्रेम होता है वहाँ हमेशा चमत्कार होते हैं।
बहुत खूब।
और इसी गहरे अर्थ को बताने के लिए कैथर ने बहुत खूबसूरत प्रतीक इस्तेमाल किए हैं, जैसे कैथेड्रल जो सांस्कृतिक संगम का प्रतीक है। कहानी की शुरुआत में एक क्रूस के आकार का पेड़ है जो लाटूर को रेगिस्तान में रास्ता दिखाता है। ये प्रकृति में ईश्वर के संकेत का प्रतीक है। और फादर वैलेंट के प्यारे खच्चर,
कॉन्टेंटोर एंजेलिका,
हाँ, वो सेवा और विनम्रता के प्रतीक है। वो उस अथक मेहनत को दिखाते हैं जो इस पूरे मिशन की नींव थी।
तो ये कहानी हमें आस्था, दोस्ती और किसी नई जगह को अपना घर बनाने के बारे में क्या सिखाती है?
ये हमें याद दिलाती है कि एक सार्थक जीवन बड़ी बड़ी नाटकीय घटनाओं या जीतों से नहीं बनता, बल्कि शांत समर्पण, धैर्य और प्रेम के साथ कुछ स्थायी और सुंदर बनाने से बनता है। ये दिखाती है कि कैसे दो दोस्त अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ एक दूसरे का सहारा बनकर एक ऐसा काम पूरा कर सकते हैं जो उनसे कहीं ज्यादा बड़ा और टिकाऊ है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।